आप ऐसा कैसे कर सकती हैं दीदी? आपको नहीं पता उस इंसान ने क्या किया है और आप उसी के साथ उसके घर में रहने के लिए भी तैयार हो गई हैं। मिश्री फोन पर अरुणिमा पर चिल्लाती हुई ये कह रही थी। जब से मिश्री को ये पता चला है कि अरुणिमा वापस महल लौट गई है, तब से वो बहुत नाराज हो रही थी। मिश्री को सक्षम ने एक बहुत अच्छे हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया था और मिश्री की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अरुणिमा की जो हालत थी उसकी वजह से वो कितना कुछ झेल रही थी। ऐसे में मिश्री की पढ़ाई पर असर पड़ रहा था, जिसकी वजह से सक्षम ने मिश्री को हॉस्टल में भेज दिया था। मिश्री की बात सुनकर अरुणिमा एक गहरी सांस छोड़ती है और कहती है, मिश्री मेरी बात सुनो, देखो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हम सबकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, और तुम फिक्र मत करो, मैं कोई इनके पास वापस नहीं आई हूँ, बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, तब तक तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरुणिमा फ़ोन पर बात कर वापस आती है तो देखती है हॉल में सब लोग बैठे हुए हैं और आस्तिक बच्चों के पास खड़ा है। वो पालने के पास से हिल भी नहीं रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए इस घर में किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई भी उसके बच्चे को छूने के बहाने उन्हें तकलीफ़ पहुँचा देगा, उन्हें चोट लगा देगा। आस्तिक अपने बच्चों के पास से हटने का नाम तक नहीं ले रहा था। तभी अरुणिमा को अपने पीछे पृथ्वी की आवाज़ सुनाई देती है। थैंक यू अरुणिमा। अरुणिमा चौंक जाती है और पृथ्वी को देखने लगती है। पृथ्वी अरुणिमा के बिल्कुल सामने खड़ा था। वो अरुणिमा के पास आता है और कहता है, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए और भाई को वापस घर लाने के लिए। तुम नहीं जानती हो ये करके तुमने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरुणिमा अपने दोनों हाथ बांधती है और कहती है, नहीं पृथ्वी, मैं यहाँ पर तुम सब पर कोई एहसान करने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम लोगों ने जो मुझ पर एहसान किया है उसका कर्ज चुकाने आई हूँ, और मैं ये तुमसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओगे। पृथ्वी अफसोस के साथ अपना चेहरा नीचे करते हुए हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। शारदा देवी मर्डर केस में तुम्हारा नाम कभी सामने नहीं आएगा, उनकी मौत हमेशा एक हादसा बनकर रह जाएगी। अरुणिमा के चेहरे पर एक सख्ती थी और उसने कहा, बस इसीलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब 5 साल के हो जाएं तो पुलिस मुझे मेरी माँ के मर्डर केस में जेल भेज दे और फिर मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं। इसलिए मैंने तुम्हारी शर्त को माना है। मैं तुम्हारे भाई को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगी और बदले में तुम इस केस को बंद करवा दोगे। पृथ्वी हाँ में अपना सर हिलाता है तो अरुणिमा वहाँ से आस्तिक की तरफ चली जाती है। अरुणिमा ताईजी के पास जाकर बैठ जाती है और आस्तिक को देखने लगती है, जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। आस्तिक अपने हाथों की उंगलियों से कभी आकाश को छूता तो कभी अनंत को। आकाश जब आस्तिक की उंगली छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता तो आस्तिक अपना हाथ पीछे कर लेता, जिसे देखकर आकाश हंसने लगता, और फिर जब अनंत की तरफ उंगली करता तो वो जल्दी से उसकी उंगली पकड़ लेता था। बच्चे अपने पिता का स्नेह पाकर मुस्कुरा रहे थे। आस्तिक को ऐसा देखकर अरुणिमा लगभग से ये भूल ही गई थी कि गुजरे 1 साल में आस्तिक ने उसके साथ क्या क्या किया था। कुछ पल के लिए वो बस आस्तिक को अपने बच्चों के पिता के रूप में देख रही थी। एक आशा अरुणिमा के मन के अंदर उसे ये कहती है कि अगर आस्तिक सही होता तो आज हमारा भी एक खुशहाल परिवार होता। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दोनों बच्चे रोने लगते हैं। अरुणिमा अचानक से होश में आती है और देखने लगती है कि आस्तिक अपने बच्चों को रोता हुआ देख खुद रोने बैठ गया था। वो रोते हुए अपने बच्चों को हाथ हिलाते हुए चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे। आस्तिक को ऐसा देखकर सबको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अरुणिमा को पता था कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। वो जल्दी से बच्चों को उठाती है और आस्तिक से कहती है, आस्तिक रोना बंद कीजिए, बच्चों को भूख लगी है, वो खेलते खेलते थक गए हैं, मैं कमरे में जाकर इन्हें दूध पिला देती हूँ। अरुणिमा दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो बेड की तरफ बढ़ पाती उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। वो पीछे पलटकर देखती है तो सामने आस्तिक खड़ा था। आस्तिक को देखकर अरुणिमा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहती है, आस्तिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर जाइए, मुझे बच्चों को दूध पिलाना है। हाँ तो पिलाओ ना, मैं कौन सा इनका दूध छीनने के लिए आया हूँ, मैं बस यहाँ दूर से ही इन्हें देखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ दूर से खड़ा होकर बस मैं इन्हें देख रहा हूँ, और तुम जल्दी दूध पिलाओ, देख नहीं रही आकाश और अनंत कितना रो रहे हैं। अरुणिमा ने अपना सर पीट लिया। अब वो कैसे आस्तिक को इस बारे में समझाए, उससे बहस करना तो दीवार पर सर मारने के बराबर था। वो जितना आस्तिक से बहस करती आस्तिक उतना ही उल्टे सीधे तर्क उसके सामने रख देता, और ऐसे में अरुणिमा उससे बहस करने में उलझ जाती तो बच्चों को दूध कब पिलाती। अरुणिमा ने आस्तिक को देखा और कहा, ठीक है आप कमरे में रह सकते हैं, लेकिन आप दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए, जब तक मैं बच्चों को दूध पिला रही हूँ तब तक आप इस तरफ नहीं देखेंगे, अगर आपने इस तरफ देखा तो बच्चे दूध नहीं पियेंगे। आस्तिक जल्दी से हाँ में सर हिलाता है और कहता है, ठीक है मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, लेकिन तुम मेरे बच्चों को अच्छे से दूध पिलाना, वो भूखे हैं और भूख अच्छी नहीं होती है। तुम्हें पता है दूसरे वाले घर में मुझे भूख लगती थी तो कोई मुझे खाना नहीं देता था, मुझे एक रोटी मिलती थी और उससे मेरी भूख नहीं जाती थी, भूख बहुत गंदी होती है, तो मेरे बच्चों को अच्छे से दूध पिलाओ। अरुणिमा बच्चों को लेकर बेड पर बैठ जाती है, लेकिन आस्तिक की बात सुनकर उसका मन पसर जाता है। पागलखाने में आस्तिक को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे थे, जहाँ पर उसे एक एक रोटी के लिए रोना पड़ रहा था और कोई उसे ठीक से पेट भरकर खाना भी नहीं देता था। क्या ये वही आस्तिक रायचांद है जो अपने दरवाजे से किसी को भूखे पेट नहीं जाने देता था। दूध पीते हुए दोनों बच्चे सो गए थे। अपने दोनों बच्चों को पालने में सुलाकर अरुणिमा आस्तिक को बच्चों के पास ले आती है। अरुणिमा देख रही थी कि आस्तिक बच्चों की और उसकी कितनी केयर कर रहा है। बच्चों का सामान अलमारी में लगाने से लेकर उनके कपड़े तक समेटना और अरुणिमा के साथ बेडशीट सही करना, आस्तिक हर वो काम कर रहा है जो एक अच्छा पति करता है।